ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। विश्व उपभोक्ता दिवस के मौके पर नेपाल में उपभोक्ता अदालत हुई गठित। ललितपुर में स्थापित अदालत को काठमांडू घाटी के 3 जिलों के मामले देखने का दिया गया क्षेत्राधिकार। बांके के जयंदू बाल सुधार गृह में बाल बंदियों के बीच की झड़प हुई नियंत्रित। मध्य प्रदेश में नियम विपरीत संचालित 73 अस्पताल बंद करने का प्रदेश सरकार ने किया निर्देश। और यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए रूस पर दबाव बनाए रखने का ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने विश्व के नेताओं से किया आग्रह। अब समाचार विस्तार से। विश्व उपभोक्ता दिवस के मौके पर नेपाल में उपभोक्ता अदालत गठित की गई है। काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर जिलों के अंदर उपभोक्ता संबंधी मामले पर कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार सहित उपभोक्ता अदालत गठित हुई है। प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत ने ललितपुर में अदालत का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधान न्यायाधीश राउत ने कहा कि उपभोक्ता के अधिकार को संविधान ने मौलिक हक के रूप में स्थापित कर रखा है और अब गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं व सेवाओं में उपभोक्ताओं को न्यायिक उपचार प्राप्त करने का अधिकार सुनिश्चित हुआ है। कार्यक्रम में उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दामोदर भंडारी ने कहा कि स्वच्छ और प्रतिस्पर्धी बाजार विकसित करने और उपभोक्ताओं के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता अदालत का गठन हुआ है। मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किए गए स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्र के अनुगमन की जनता ने सराहना की है और इस प्रयास को निरंतरता देने का सुझाव भी दिया है। बता दें कि प्रदेश मुख्यमंत्री की टोली ने 114 अस्पतालों का अनुगमन किया था और इस दौरान कानून विपरीत संचालित किए गए 73 अस्पतालों को बंद करने का निर्देश किया है। ये जानकारी हमारे संवाददाता ने दी। बांके की डुडुआ स्थित जयंदू बाल सुधार गृह में झड़प में 49 लोग घायल हो गए। दोनों गुटों के बीच हुई झड़प में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बांके के मुख्य जिलाधिकारी धर्मराज जोशी ने बताया कि पुलिस ने आज दोपहर में ही झड़प पर काबू पा लिया था। झड़प के दौरान सुधार केंद्र के अंदर आगजनी भी की गई। बाल बंदियों ने उन कपड़ों, बर्तनों और फर्नीचर में आग लगा दी जिनका वे प्रयोग करते थे। घटना में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक बाल सुधार गृह में कल रात शुरू हुआ विवाद दो पक्षों के बीच झड़प में बदल गया। किशोरों ने सुधार गृह की निचली मंजिल में आगजनी की थी। सभामुख देवराज घिमिरे ने कहा कि नेपाल के दीर्घकालीन विकास के लिए चीन के साथ सहकार्य को और अधिक प्रभावकारी बनाते हुए पारस्परिक हित के क्षेत्र में अतिरिक्त निवेश करने की जरूरत है। फाउंडेशन फॉर पीस डेवलपमेंट एंड सोशलिज्म द्वारा आज काठमांडू में आयोजित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई और नेपाल चीन सहकार्य संबंधी काष्ठमंडप डायलॉग में सभामुख घिमिरे ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि निवेश की संभावनाओं की सही तौर पर पहचान करते हुए बीआरआई अंतर्गत नई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह ने कहा कि नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले की गठबंधन सरकार का गठन तत्कालीन परिस्थिति की उपज है। उन्होंने कहा कि देश को संकट से बचाने के लिए कांग्रेस एमाले की गठबंधन सरकार बनी। नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पा शाखा द्वारा आज पाल्पा में प्रेस मीट के दौरान उप प्रधानमंत्री सिंह ने ये बात कही। उन्होंने आगे कहा कि आर्थिक विकास समेत राष्ट्र निर्माण की गतिविधि शून्य प्राय होने के बाद गठबंधन सरकार बनी थी। इस बात का जिक्र करते हुए कि राजावादियों की गतिविधि बेशक बढ़ी है लेकिन राजतंत्र के बारे में बात करने का कोई औचित्य नहीं है, उन्होंने कहा कि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर सभी राजनीतिक दलों को एकमत होना चाहिए। राष्ट्रीय सभाध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल ने कहा कि संसद के मौजूदा अधिवेशन से ही शिक्षा आयन समेत दर्जन भर आयन पारित होंगे। आज ललितपुर में एक कार्यक्रम के दौरान इस बात का जिक्र करते हुए कि जनता के मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए आयन पारित होना जरूरी है, सभाध्यक्ष दाहाल ने बताया कि मौजूदा अधिवेशन से ही ये आयन पारित होंगे। उन्होंने आगे बताया कि फिलहाल दोनों ही सदनों में निजामती विधेयक, प्रहरी समायोजन लगायत कई विधेयक विचार विमर्श के क्रम में हैं। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकमको 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नजी नेपाल टेलिकमको 4G आफ्नो भन्य आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार.
अब बाकी समाचार. नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि आंदोलनरत शिक्षकों की मांगों को सरकार को जल्द संबोधित करना होगा. विद्यालय शिक्षा विधेयक को तत्काल पारित करने की मांग के साथ आंदोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई भेंट में अध्यक्ष प्रचंड ने ये बात कही. उन्होंने कहा कि शिक्षकों की जायज मांगों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए. नेकपा एकीकृत समाजवादी ने सुशासन रोजगार लगायत मुद्दों पर केंद्रित होकर देशव्यापी समाजवादी अभियान शुरू किया है. आगामी वैशाख 22 कृत्य तक संचालित होने वाले अभियान में विभिन्न क्षेत्रों के संघ संगठनों और व्यक्तियों के साथ वार्ड गांव प्रदेश और केंद्र स्तर पर विचार विमर्श होंगे. ये बात केंद्रीय प्रचार विभाग प्रमुख प्रकाश ज्वाला ने बताई. उन्होंने विश्वास जताया कि जनता की विकास की चाह पूरी न होने के वर्तमान समय में उनकी असंतुष्टियों को संबोधित करने और देश की वर्तमान स्थिति के बारे में उन्हें अवगत कराने में ये अभियान उपयोगी साबित होगा. मोहतरी के गौशाला 1 रामनगर स्थित एवरेस्ट शुगर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज इस वर्ष गन्ने की कमी के कारण लक्ष्य के अनुरूप क्रशिंग यानी गन्ने को कुचलकर चीनी बनाने की प्रक्रिया नहीं कर सकी. इसके कारण जो उद्योग चैत मासांत तक चलने वाला था उसे गन्ने की कमी के कारण फागुन मासांत में ही बंद करना पड़ा. मार्गशीर्ष 26 को गन्ना पेराई शुरू करने वाले उद्योग ने कहा कि गुरुवार को गन्ना नहीं आने के बाद इस साल पेराई रोकनी पड़ी. महाप्रबंधक सुरेंद्र शुक्ला ने बताया कि उद्योग ने इस वर्ष लक्ष्य से 4 लाख क्विंटल कम गन्ना पेराई की है. उन्होंने बताया कि हालांकि उद्योग ने इस साल कम से कम 35 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य रखा है लेकिन केवल 31,03,051 क्विंटल ही पेराई हुई है. उद्योग प्रशासन के मुताबिक इस बार गन्ने की कमी के कारण 3,15,000 क्विंटल चीनी उत्पादन का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका. इस बीच उद्योग ने किसानों से फागुन 25 तक लाए गए गन्ने का भुगतान पहले ही कर चुके होने की जानकारी भी दी. अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने दुनिया भर के बड़े नेताओं से कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आज नहीं तो कल बातचीत के लिए आना ही पड़ेगा. कीर स्टारमर ने नेताओं से कहा कि उन्हें यूक्रेन में संभावित शांति समझौते की रक्षा के लिए तैयार रहना होगा. रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चल रहे एक वर्चुअल सम्मेलन में स्टारमर ने कहा यूक्रेन में शांति सुनिश्चित करने के लिए हमें फंडिंग और अन्य सहायता से देश की रक्षा को मजबूत करना होगा. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संभावित युद्ध विराम समझौते के लिए यूक्रेन के सहयोगियों को एकजुट होकर समझौते की शर्तों की रक्षा के लिए तैयार रहना होगा. उन्होंने कहा अगर पुतिन सचमुच शांति चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान है. उन्हें यूक्रेन पर अपने बर्बर हमले रोकने होंगे और युद्ध विराम पर सहमत होना होगा. यूक्रेन युद्ध को लेकर चल रहे वर्चुअल शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत कई देशों के नेता शामिल हुए हैं. अब मौसम. अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा. अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर. विश्व उपभोक्ता दिवस के मौके पर नेपाल में उपभोक्ता अदालत हुई गठित. ललितपुर में स्थापित अदालत को काठमांडू घाटी के 3 जिलों के मामले देखने का दिया गया क्षेत्राधिकार. बांके के जयेंदू बाल सुधार गृह में बाल बंदियों के बीच की झड़प हुई नियंत्रित. मध्य प्रदेश में नियम विपरीत संचालित 73 अस्पताल बंद करने का प्रदेश सरकार ने किया निर्देश. और यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए रूस पर दबाव बनाए रखने का ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने विश्व के नेताओं से किया आग्रह. रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए. रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार. नमस्कार. शुभ रात्रि.